फिर उसके बाद आगे वाक्या आता है आयत नंबर 67 से 72 तक, गाय का वाक्या, जिसकी बुनियाद पे सूरत को सूरत बकरा भी कहते हैं। वइस काल मूसा लिकौमिही इन अल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बकरा, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि बेशक अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि तुम्हें गाय ज़िबा करो, कालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ, कहने लगे क्या आप हमसे मजाक करते हैं। قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين, कहने लगे मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ इस बात से कि मैं जाहिल बनूँ। एक तो सूरत फातिहा के बाद तरतीब के अतबार से ये पहली दुआ है, आज भी इस दुआ को मांगिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने जहालत से पनाह मांगी थी। अब हुआ क्या, ज़रा सा इस वाक़े को समझिए, क्योंकि इसके नाम पे सूरत है। अल्लाह सुबहाना ताला ने इस वाक़े को यहाँ बीच में क्यों रखा, बिल्कुल पारे का मेट बन जाता है और उसके इर्द गिर्द अल्लाह ने ये बात रख दी। तीन वजूहात इसकी आप नोट कर सकते हैं। नंबर एक, मिस्रियों में रहते हुए, यानी मुशरिक थे ना मिस्री, पेगन्स थे, वो गाय की पूजा करते थे। बनी इसराइल जो उस दौर के मुसलमान थे, इनके दिलों में भी गाय का तकद्दस आ चुका था, अल्लाह ताला ये तोड़ना चाहते थे। दूसरी वजह ये थी कि वक्त के साथ साथ इनके अंदर से मरने के बाद दोबारा उठाया जाना, ये तसव्वुर ख़त्म हो गया था, अल्लाह ताला इनका ये तोड़ना चाहते थे। और तीसरी वजह ये भी थी कि एक वाकई कत्ल हो गया, अल्लाह ने असबाब के पर्दे में चीज़ें रखी। मूसा अलैहिस्सलाम को वही मिली कि इनसे कहो कि कोई भी गाय ज़िबा करे और मकतूल के जिस्म पे जाकर उसका गोश्त लगाए, अल्लाह की रहमत से एक मोजज़ा होगा, वो मुर्दा उठेगा, अपने कातिल का नाम बताएगा, और इनको एक तो कातिल का पता चल जाएगा, दूसरा मरने के बाद दोबारा उठने पर यकीन आएगा, और तीसरी कि जब गाय अपने हाथ से ज़िबा करेंगे तो इनके दिल से गाय का तकद्दस निकल जाएगा। अब ये करना नहीं चाहते थे क्योंकि गाय इनके लिए तो खुदा थी, ये तो उसको हाथ ना लगाएं। इतने सवाल जवाब उन्होंने किए, इतनी कहानियां उन्होंने उसमें पेश कर दी कि बिल आखिर भारी कीमत पे गाय लेकर ज़िबा की, और वो सब हो गया जो होना था। अल्लाह ने उस वाक़े को सूरत बकरा में क्यों रखा जो आज मेरे और आपके लिए, कि जो कौम अल्लाह के एक सीधे सादे हुक्म को सुनकर आगे से उसके ऊपर बहस करती है, हलाल है हराम है, इसके अंदर क्या कौन कहता है, मैं करूँ ना करूँ, तो अल्लाह को उस पर गुस्सा आता है। और साथ ही साथ आप देखिए कि अल्लाह ने इसमें यह भी बता दिया कि आपकी औकात क्या है कि आप अल्लाह के हुक्म को माने। आप इसको अपने पर लिखिए, देखिए आपका बच्चा आपसे हुए उम्र में 20 साल छोटा है और आप उसको कहती बेटा पानी देना, मामा क्यों दूँ, फ़र्ज़ है, अच्छा मैं ना दूँ तो हराम है, अच्छा ये मकरूह है, अच्छा मामा कितना को आपको गुस्सा आएगा, तो क्या आप उसके हाथ से फिर पानी लेंगी, और अगर के पानी लाऊँ कैसे लाऊँ, किस ग्लास में लाऊँ, स्टील का शीशे का, ठंडा लाऊँ गर्म लाऊँ, आप छोटे भाई को क्यों नहीं कहती, मुझे क्यों कहती हैं, तो आप कहेंगे तुम रहने दो मुझे नहीं चाहिए। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, दिन में 17 बार कहने वाले का सिर्फ एक ही मुकाम है कि जब अल्लाह कुछ कहे जी अल्लाह। वइस काल लहु रब्बुहु अस्लिम काल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। तो लिहाजा इस गाय के वाक्य में हम सब के लिए आज बींग अ मुस्लिम बहुत सारे सबक हैं। सीधी सीधी बात सुनो और अमल कर दो। आज भी हमने दीन को बहुत बोझल बना दिया, कभी किसी के फतावा की रोशनी में, कभी किसी के कुछ और नज़रियात की रोशनी में, सीधा सा दीन है हमारा, आसानियों के साथ चलता है। लेकिन याद रखिए कि यहूद पे जो अल्लाह का गुस्सा है ना, वो उनके उलमा की वजह से, इसलिए अब अगली आयात में आयत 75 से 82 में देखें तो बनी इसराइल के अवाम जिनको उम्मीजीन कहा जा रहा है और उनके उलमा के जराइम पेश किए जा रहे हैं। आयत नंबर 75 में आता है, अफतत माउन यूमिनू लकुम, क्या तुम्हें ये तमा है कि ये तुम पर ईमान ले आएंगे, वक़द कान फरीकुम मिनहुम यस्मऊना कलाम अल्लाह, इनमें से एक गिरोह तो ऐसा था जो अल्लाह का कलाम सुनता था, सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बादी मा अकलू, फिर वो उसको बदलता था, उसमें तहरीफ कर देता था उसको समझने के बाद, वहुम यालमून, और अनजाने में नहीं करते थे बल्कि जानते बूझते ये काम करते थे। और ऊपर इनके उलमा की खुश फहमी क्या थी, वक़ालू लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामन मादूदा, कहते थे हमें नहीं आग छूनी, हाँ अगर हम आग में गए भी ना तो गिनती के चंद दिन, कोई कहता हफ्ते में 7 दिन जाएंगे आग में, हर हफ्ते के दिन एक दिन, हर इतवार पीर मंगल, यानी पूरे हफ्ते का एक एक दिन कंपनसेट कर देगा हमारे आग में जाने के जरायम को पूरी ज़िंदगी के। कोई कहता 40 दिन बछड़े की पूजा की थी तो उसके लिए, अल्लाह ताला कहते हैं निजात के लिए तुम्हारी तमन्नाएं काफ़ी नहीं है। मजहबी तबके में जब ये खराबी हो जाए कि वो लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह के अहकाम को बदल दे, कभी डाइल्यूट कर दे, कभी स्ट्रॉन्ग कर दे, तो याद रखिए कि वहाँ अवाम फिर अनपढ़ रह जाती है। आज भी आप देखिए कि एक चीज़ जिसे आप शायद रिलेट कर सकें, यहूद में एक ऐसा दौर भी गुज़रा कि दीन पर इनके उलमा की मिनोपली हो गई। तौरात को अपने घरों में रखना जुर्म था। एक आम शख्स जिसको आप ले मैन कह सकते हैं, हम जैसा, उसके घर में तौरात निकल आए जुर्म था। तौरात का नुस्खा बादशाह के पास, उसके पादरी जो करीब बैठे थे उनके पास होता था। जब भी कोई मामला देखना होता उस पादरी के जरिए देखा जाता। अब जब एक आध बंदे के पास अथॉरिटी थी ना, तो कुछ लोग रिश्वत देकर जाकर आयात को चेंज करा लेते। आम लोगों तक तो कुरान पहुंचा ही नहीं। और ये बात कहते हुए अगर आप मेरे दिल की कैफियत महसूस करें ना, तो आप इस दर्द को महसूस कीजिए। इस वक्त जिस जनरेशन से आप और मैं गुजर रहे हैं ना, इससे ऊपर वाली जनरेशन को ले लें, आज उम्मत मुस्लिमा के साथ भी यही हुआ। क्या आज कुछ लोग ये नहीं कहते कि कुरान आम लोग नहीं पढ़ सकते और औरत तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकती? जी ये तो पढ़ने के लिए पहले इतने उलूम सीखने पड़ते हैं, इसको पढ़ने के लिए तो 8-10 साल का कोर्स करना पड़ता है। मुझे ये बताइए कि एक बद्दू नबी के दौर में कलमा पढ़ने के बाद पूछता अल्लाह के नबी मैं क्या करूं कि मैं जन्नत में चला जाऊं, और आप उसको 3-4 बेसिक चीज़ें बताते हैं, और वो जाते जाते कहता है ना मैं इसे कम करूंगा ना ज़्यादा करूंगा। और वो जब उठ के जाता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम में से जिसने जन्नती को देखना है इसको देख ले। वो नबी जो खुद उम्मी थे, 40 साल की उम्र में वही आती है, उससे पहले फितरत की रोशनी में अमल करते थे, जब वो जन्नत में जाने को इतना आसान समझाएं, तो आज हमारे लिए दीन की मुश्किल है। आज हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए दीन इतना बोझल क्यों है? उसकी वजह ये कमियां बेशियां हैं। ये किताब पानी की तरह आम कीजिए। ऑक्सीजन की जरूरत सिर्फ शहर के बड़े बड़े लोगों को नहीं होती, छोटे से बड़े हर इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत है। इस कुरान के पानी को रूट्स में डाल दीजिए। आज हमारा भी यही गोल है। और अगर आप लफ्ज़ नूरुल कुरान पूछे ना कि कौन है, एक नाम है जिसके साथ आपको पहचान अगर होती है, तो नूरुल कुरान का मकसद भी है कि इनलाइटन द हार्ट्स विद द नूर ऑफ अल कुरान। कोई फिक नहीं है, कोई मसलक नहीं है, कोई फिरका नहीं है, कोई जमात नहीं है, ये एक तहरीक है, एक मूवमेंट है कि बच्चों से लेके बूढ़ों, औरतों से लेके मर्दों, यंग और छोटे बड़ों, सब तक कुरान पहुंच जाए। सादा सादा उसका टेक्स्ट आपको पढ़ाते हैं, आपको लफ्जी तर्जमा सिखाया जाता है, ताकि आप 1-1.5 साल के अंदर खुद कुरान को पढ़ के देख लीजिए, ताकि आज भी उम्मत मुस्लिमा का ये जमूत टूटे। फिर आप देखिए कि आज हमारे पास भी ऐसी कई चीज़ें आपको मिलती हैं, उस दरवाजे से गुजर जाओ तो तुम जन्नती हो, ये पानी पी लो तो ये हो जाएगा, उसका पल्लू थाम लो, ये सारी बातें एक जुमले पे ख़त्म कर दीजिए, निजात के लिए तमन्नाएं काफ़ी नहीं है। अमल से ज़िंदगी बनती है, ख्वाहिशों से नहीं, वरना तो सब जन्नत में चले जाएं। आरजुओं से जन्नत मिलती तो सबको मिलती। कौन सी माँ है जो अपने बेटे की जन्नत की दुआ नहीं करती? कौन सी बहन है जो अपने भाई के जन्नत में जाने की दुआ नहीं करती? सब करते हैं। तो सिर्फ दुआओं से नहीं होता, जब तक आपके अंदर तलब ना आ जाए। फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे जब बढ़ते हैं ना, तो आयत 83-84 में बनी इसराइल की अल्लाह ताला से अहद और उसके अहद शिकनी की बात है। आपने शुरू से बात सुनी होगी 10 कमांडमेंट्स, अहकाम अशरा। ये जो आयत इस वक्त आपके सामने है ना, ये असल में तौरात का पैगाम है। उम्महातु शरिया भी कहते हैं, बेसिक्स ऑफ दी शरिया जो कभी नहीं बदले। और उसमें आप देखिए तरतीब से देखेंगे ना, तो ला ताबुदून इल्लल्लाह, हकूकुल्ला में अल्लाह का हक, और हकूकुल इबाद में वबिल वालिदैनी एहसाना। आप इस पूरी आयत का तर्जमा पढ़कर देखेंगे तो आपको वो बेसिक चीज़ें जो हर दौर में एथिक्स के नाम पर भी रहीं और अल्लाह के हक के साथ, अल्लाह ने बनी इसराइल को तौरात में ये अहकामात दिए, आज उम्मत मुस्लिमा को भी दिए। यही नबी सल्लम की वसीयत आपको सूरत अल अनाम में एग्जैक्टली 19-20 के थोड़े बहुत लफ्ज़ों के फ़र्क से मिलती है। लेकिन फिर ये कौमें जिनको अल्लाह ने इतना खूबसूरत पैगाम दिया वो रुसवा क्यों हुई? उस रुसवाई की वजह आपको आयत 85 से 86 में दिखेगी और वो है शरीयत पर जुज़वी अमल, पार्शल इताअत। अफतू मेनू नबी बा दिल किताब व तक फुरू नबी बा, क्या पस तुम किताब के बास हिस्से पे तो अमल करते हो और बास को छोड़ देते हो? और अगर कोई ऐसा करेगा फमा जजाओ मई यफ़लु ज़ालिक मिनकुम इल्ला हिज़्युम फिल हयात दुनिया व यौमल क़ियामत युरद्दून इला शद्दिल अज़ाब। अगर आपको आज इस आयत को इस आईने में देखकर उम्मते मुस्लिमा की मौजूदा हालत नज़र आ जाए तो मकसद हासिल हो गया। यह है आज उम्मते मुस्लिमा के जवाल की बहुत बड़ी वजह, और वो क्या है कि हम पूरे दीन पर नहीं अधूरे दीन पे अमल करते हैं। आप देखिए, जो बात अच्छी लगी वो मान ली, जो अच्छी ना लगी वो छोड़ दी। नमाज पढ़ते हुए तो किबले को इंचिस टेप के साथ नापते हो, तुम्हारा नमाज का किबला कोई 19 से 20 पे हो जाए तो आप फतवे दे देते हैं कि नमाज नहीं हुई, पलटा दो, ये ना करो वो। और शादियों के किबले किधर है? तिजारत का किबला क्या है? बच्चों की तरबियत का किबला किधर है? आज हम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का लफ्ज़ तो बहुत बोलते हैं, लेकिन हलाल हराम का फ़र्क किधर है? तो लिहाजा जो कौम, चाहे वो कल यहूद थे और आज मुसलमान हैं, अल्लाह की पूरी बात पे अमल नहीं करेंगे बल्कि कुछ पे करेंगे कुछ पे नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला की तरफ से उनको यही सज़ा मिलेगी कि गैर कौमें उन पे मुसल्लत हो जाएंगी और वो अल्लाह के नबी की कौम होने के बावजूद ज़िल्लत में होगी। आज तारीख को छोड़ दीजिए, आज आपको पूरी दुनिया के ग्लोब पे आयत लिखी हुई दिख रही है। तो ज़रूरत है कि हम सब बैक टू बेसिक आते हुए इस पूरे कुरान को पढ़ें और इस पे अमल लें। फिर उसके बाद अगर आप आयत 87 से 93 को देखें तो इसमें बनी इसराइल का नबी सल्लम से हसद दिखता है, जिसकी वजह से ये मदीना में आपके ऊपर ईमान नहीं लाए थे, और आज वही चीज़ उम्मत मुस्लिमा के साथ दुश्मनी की सूरत में दिखती है। वलकद आतैना मूसल किताब वकफ्फैना मिन बादिही बिर्रुसुल वआतैना ईसा इब्न मरियम अल्बय्यिनाति वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, यानी बनी इसराइल के आखिरी नबी जो थे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, और अल्लाह ताला ने उनको अनयूजुअल तरीके से दुनिया में पैदा किया। यहूद ने हज़रत मूसा तक को तो माना लेकिन हज़रत ईसा को भी नहीं माना, और नबी सल्लम की उम्मत को और आपको तो बिल्कुल नहीं माना। यदि इसके बीच में हिस्ट्री है, क्योंकि अपनी पसंद की बात को मान लेना और अपनी पसंद से अलग बात को छोड़ देना ये बहुत बड़ा जवाल है। और असल सारी बातों के पीछे वजह क्या थी, जिसको आप कहते हैं ना नटशेल, वो श्रीबुफी कुलू बिहिमुल इजला बिकुफरी है, उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत भरी हुई थी। ये बछड़ा क्या है? आप यहाँ लफ्ज़ है कि इजल, काफ होता है ना गाय का बच्चा, और उजलत का लफ्ज़ उर्दू में बोलते हैं जल्दबाजी, और सूरत बनी इसराइल में दुनिया को अलाजिला कहा गया, यानी दुनिया की मोहब्बत। कोई भी हो, चाहे वो माल की मोहब्बत हो, शोहरत की मोहब्बत हो, लीडरशिप की मोहब्बत हो, अल्लाह ने बता दिया कि ये मोहब्बत और अकीदत पानी की तरह इनके दिलों में पिला दी गई थी। यानी जब मजहबी तबके में दुनिया की मोहब्बत आ जाती है तो वो पूरा पैगाम देने की बजाय पिक एंड चूज लोगों को सिखा देते हैं, और नतीजा क्या होता है कि वो उस पैगाम से बहुत दूर हो जाते हैं। फिर इसके बाद आयत नंबर 94 से 96 को अगर आप देखें ना, तो इनको एक चैलेंज किया गया। ये कहते थे हम अल्लाह के प्यारे हैं, मरते ही सीधे जन्नत में चले जाएंगे, तो अल्लाह कहते हैं अच्छा, अगर अल्लाह के महबूब हो तो मौत की आरजू करो, और साथ ही बता दिया कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरत इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नासी फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। देखिए ना, अगर एक शख्स कहता है कि मरते ही मुझे जन्नत मिल जानी है तो उसको क्या कहा जाएगा कि दुनिया में तो तुम्हें बहुत तकलीफें आ रही हैं, इतनी तुम्हारी दुर्गत बन रही है, फिर मौत की तमन्ना करो। लेकिन असल में उनको मौत का खौफ था। अल्लाह कहता है ये चाहते हैं कि हम में से हर एक हज़ारों साल जिए, क्योंकि उनको अपने मामलात पता है, तो जो जन्नत की उम्मीद रखता है वो मौत को नापसंद नहीं करता। ठीक है, मौत का खौफ फितरी है, लेकिन मोमिन मौत से डरता नहीं है। फिर एक और इनका बहुत बड़ा मसला थे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, उनसे भी इनको बुग़्ज़ था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए शरीयत आती थी, कहते थे ये हम पे मुश्किल अहकामात लेके आते हैं, बड़ी मुश्किल तौरात लेकर आए। ये तो ऐसी है जैसे किसी शिपिंग कंपनी के आप दुश्मन बन जाएं कि ये हमें बिजली का बिल देते हैं और ये बिल बहुत ज़्यादा आया है तो हम अब इस डाकिये से ही नाराज़ हैं। और इसी तरह हज़रत जिब्राइल के ऊपर इनका एक और भी गुस्सा था कि ये हम पर अजाब की खबरें क्यों लेके आए। तो आयत 97 से 101 तक में अल्लाह ताला ने क्या बताया, कुल मन कान अदुवल्ली जिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, और जो कोई जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दुश्मन होगा तो वो तो इसको अल्लाह के हुक्म से आपके दिल पे नाजिल करते हैं, क्या मुसद्दिकन लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुशरा लिल मोमिनीन, के जो उस चीज़ की तस्दीक करती है जो इनके हाथों में है और हिदायत और खुशखबरी है मोमिनों के लिए। इस आयत से एक तो ये पता चलता है कि इनको जिब्राइल से दुश्मनी थी, दूसरी बात पता चलती है कि कुरान अल्लाह के नबी के दिल पे नाजिल हुआ। आप भी अपने दिल पे इसको नाजिल कीजिए, आप पूरी तवज्जो से कुरान को सुनते हैं ना तो ये आपको वाकई महसूस होता है कि आपके अपने दिल पे नाजिल हो रहा है। और इससे एक और बात पता चलती है कि कुरान हिदायत और बुशरा है ईमान वालों के लिए, तो हमें इस किताब से मोहब्बत होगी। अल्लाह ने बनी इसराइल को और आज हमें भी अल्लाह की इस किताब के साथ जोड़ने की दावत दी, लेकिन हुआ क्या? बनी इसराइल के एक मारूफ नबी थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उनको अनयूजुअल वाक़यात दिए, उनके पास परिंदे आते, वो उनकी बोली समझ लेते, फिर वो हवाओं में उड़ सकते थे, जिन्नात मुसख़्खर थे। तो वक्त के साथ साथ इन लोगों ने ये बात मशहूर कर दी कि हज़रत सुलेमान नबी नहीं थे बल्कि जादूगर थे। तो अगली आयत जो हम इसमें आगे देखने वाले हैं, आयत 102-103 में जादू के अमल को कुफर साबित करके युअल्लिमुन्नास सेहरा कह के बता दिया कि हज़रत सुलेमान जादूगर नहीं थे, वो तो हारूत और मारूत नाम के दो फरिश्ते अल्लाह ने एक आजमाइश के तौर पर भेजे थे जो लोगों को जादू सिखाते थे और मना करते थे कि ये ना सीखो। तो क्या पता चलता है कि जादू एक शैतानी अमल है। अगर आप इस वक्त अपने अमल की बात लें तो शैतान जादू करता करवाता है। इस्लाम में जादू का करना कराना बिल्कुल इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ये शैतानों की मदद से किया जाता है। और जादू करने के लिए कबीरा गुनाहों का इर्तकाब करने के लिए शयातीन का कुर्ब हासिल किया जाता है, इसको सहर कहते हैं, यानी जिसका सोर्स ना हो। अब जादू का असर क्या होता है, बाज़ दफ़ा कत्ल हो जाता है जादू के ज़रिए, बाज़ दफ़ा कोई सेहतमंद बंदा बीमार कर दिया जाता है, किसी की अकल ख़त्म हो जाती है, उसका माइंड मऊफ होता है, जैसे आज कुछ लोग आपको बिल्कुल दीवानगी की कैफियत में दिखते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि हवास में तब्दीली कर दी जाती है, आवाज़ बंद कर दी, अच्छा खासा बोलते थे अब बोल नहीं रहे, मोहब्बत नफरत में बदल जाती है, शौहर बीवी में एकदम बहुत शुरू हो जाता है। और जादू का अमल बहुत अचानक होता है, कभी कभी ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो दूसरों को सुनाई नहीं दी जा रही होती। अल्लाह ताला ने जादू के अमल को कुफर कहते हुए हमें आपको जादू का इलाज क्या बताया? पहली तो बात है, खुद कभी किसी पे जादू ना करें, ना अपना इलाज कराने के नाम पे, ना किसी और पे करने पे। दूसरी बात यह है कि इस्तेआज़ा, आऊज़ु बिल्लाह, आऊज़ु बिकलिमात इल्लाहित तामाति मिन शर्री मा खलक। इस पे मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि दम ज़रिया इलाज एक सीरीज़ है, हमारे पास ऐप पे भी मौजूद है और यूट्यूब पर वीडियो फॉर्म में और वेबसाइट पे तो मौजूद होगी। आप उसमें एक बुकलेट है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, नास जो आज के दौर के वो बहुत ही बड़े आलिम थे, हाल ही में उनका इंतकाल हुआ, अब्दुल्ला बिन बास, तो उन्होंने शरई रुकिया और ऐसी चीज़ों को जमा किया हुआ है, उसी में से कुछ चीज़ें आपके साथ हैं। अल्लाह का जिक्र कीजिए, कसरत से अल्लाह का नाम लें तो शयातीन आपके पास नहीं आएंगे। फिर आखिरी दो सूरतें जिनको मुवज़्ज़तैन कहते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और फलक, इसको करिए। और सूरत बकरा, बातिल लोग शैतानी चीज काम करने वाले इसकी ताप नहीं रखते। फिर आयतुल कुर्सी, इसमें भी जादू का तोड़ है, सच्ची तौबा कीजिए, शायद आपके किसी गुनाह की वजह से ये हो रहा हो। फिर आखिरी जो दो आयतें ख़ास तौर पे सूरत तौबा की, उसके बारे में आता है। और सबसे बड़ी बात है, बेकारियात छोड़ दें, लगवियात और लहवियात को छोड़ दें और कसरत से कलमा पढ़े। तहलील क्या होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके बाद आप देखिए बिल्कुल पारे के हम एंड पे आ गए, आयत नंबर 104 में यहूद नबी सल्लम की महफिलों में तौहीन रिसालत जो करते थे, आपको राई ना कहकर आपका मजाक करते थे, अल्लाह ने सच्चे मोमिनों को कहा कि या अय्युल्लज़ीना आमनू ला तकूलू राईना, तुम लफ्ज़ राई ना कहना छोड़ दो, बात को पहले गौर से सुनो ताकि तुम्हें दोबारा पूछना ही ना पड़े उसकी जगह क्या करो, कुलुन जुरना, वसमाओ और गौर से सुनो। अब इसके बाद आप देखिए कि जब इस तरह के झगड़े होते हैं ना, तो उसके बाद दीन में से बरकत चली जाती है। हरम के नाते से मुश्रिकीन मक्का के कुछ जरायम 114 से 118 में हैं। वमन असलम मिम्मा मना मसाजिद अल्लाह, यानी मस्जिदों को बर्बाद करती हैं चीज़ें। फिरका वारियत का ये रद्द है। आज भी आप देखिए कि फिरकों में पढ़कर मस्जिदें वीरान हो रही हैं। आज हमारे जवानों का दिल मस्जिदों में क्यों नहीं लगता? आपको मुझे दीन के नाम पर मोहब्बतों को आम करना है। सही दीन पहुँचाइए और इर्द गिर्द की चीज़ों को छोड़ दें। आपको मुझे अल्लाह के नबी की एक सुन्नत जो आयत 119 से पता चलती है, इन्ना अरसलना का बिल हक की बशीरम व नज़ीरा वला तुसअलू अन असहाबिल जहीम की रोशनी में पता चलता है कि दाई का काम हक को पहुंचाना है, मनवाना नहीं है। और फिर इसमें एक आयत है जिसमें कुरान की तिलावत के 5 हकूक बताए गए हैं। यानी अब अगर मैं एंड पे ये रैप अप करूं कि अब आपने मैंने जो कुरान पढ़ा है तो इसके बाद हम क्या करें? अल्लाह ताला कहते हैं अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहू हक का तिलावती। कुरान की तिलावत का हक क्या है? सबसे पहले आप देखिए इस पे ईमान लाइए, फिर इसको सही तजवीद से पढ़िए, आप भी मैं भी अपनी कुरान को ठीक कर सकते हैं, फिर इसको समझिए, फिर इस पे अमल की कोशिश कीजिए और फिर उसके बाद उसको दूसरों तक पहुँचाइए। यहाँ पे आके आयत 122 से 123 में आखिरी दफ़ा या बनी इसराइल अस्कुरू कहकर बनी इसराइल से खात्मा कलाम होता है। और आखिर में फिर पारे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक पर्सनैलिटी के तौर पे भेजा गया, क्योंकि ये बनी इसराइल भी इनसे ताल्लुक़ जोड़ते थे और मुसलमान भी। तो इस पे अल्लाह ताला ने जो बातें इनकी कही गई, हज़रत इब्राहीम पर बहुत सारी आजमाइशें डाली गई थी वक्त के साथ, और वो हर आजमाइश में पूरे उतरे। यहाँ लफ्ज़ इमाम को ज़रूर देखिएगा, आदम के साथ लफ्ज़ खलीफा था और हज़रत इब्राहिम के साथ इमाम है। फ़र्क क्या है कि जब अल्लाह के दीन को नाफिज करेंगे तो इमामत भी मिलेगी और खिलाफत भी मिलेगी। फिर आयत 125-126 में बैतुल्ला की अजमत है जो इब्राहिम और इस्माइल ने आप मिलकर ये घर बनाया था, और उसको अमन की जगह बनाकर मुकाम इब्राहिम की बातें। इंशाल्लाह आप इन दुआओं से भी फ़ायदा उठाएंगे जो इब्राहिम और इस्माइल ने अल्लाह का घर बनाते हुए की थी कि रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह से ये भी मुझे आपको भी दुआ करनी है कि अल्लाह हमसे भी ये कबूल करे। और पारे के एंड पे जो पैगाम है कि अगर तुम मिल्लत इब्राहिमी पे हो, यानी नबी सल्लम के दीन पे हो, तो अल्लाह के हर हुक्म पे झुक जाना और हज़रत इब्राहिम के तौर तरीक़ों को ना समझी ना को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से वही बंदा गाफिल होगा जो ना समझ होगा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्यों चुना? क्योंकि वो अल्लाह की बात मानते थे। इस काल लहू अस्लिम काल असलम तो रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह ताला आपको मुझे भी इसी की दावत देता है। और आखिर में देखिए 132-133 तक में औलादों को क्या वसीयत करें? आपके मेरे लिए पैगाम है, अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी में ये वसीयत कीजिए कि फ़ला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ये हज़रत याकूब ने डेथ बेड पे अपने बच्चों से कहा था कि तुम मरते दम तक इस्लाम पे रहना, और फिर निजात का दारोमदार नबियों से ताल्लुक़ पर नहीं है बल्कि अमल पे है। तिल का उम्मतुन कद खलत लहा माँ का सबक। आप और मैं जो कर रहे हैं इसका मुझे फ़ायदा होगा, आपको होगा, और जो बाद वाले करेंगे वो उनको फ़ायदा होगा। और पैगाम है पारे का सिबगत अल्लाह, अल्लाह के रंग में रंगे जाओ, ये अल्लाह की बंदगी का रंग है। पारे के शुरू में या का नाबुदू था, जो अल्लाह की बंदगी का रंग है उसको यहाँ सिबगत अल्लाह कहा गया। यानी तुम्हें देख कर इस्लाम की खुशबू आए, ये फितरत का रंग है, ये दावत तौहीद है। निजात का दारोमदार नसब पर नहीं है बल्कि लहा माँ का सबत वलकुम माँ का सब तुम। हर शख्स जवाबदेह है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हम सब अपने अमाल की जवाबदेही के लिए तैयार हों। तो ये था पारा नंबर 1। सुबहाना रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।